का था, रूह वही, रूप नया।
दिलेर मुजरिम के भाग चार में आपने सुना कि इंस्पेक्टर फरीदी की गोली लगने से मौत हो गई। नवाब वजाहत मिर्जा के ऑपरेशन की जिम्मेदारी खुद डॉक्टर शौकत ने ली और वो राजरूप नगर की तरफ चल पड़ा। लेकिन एक बार फिर डॉक्टर शौकत के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। किसी ने उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर गला दबाकर मारने की कोशिश की। कोठी के प्रोफेसर से मुलाकात के वक्त कोठी का पालतू कुत्ता ग्रामोफोन की सुई की चोट से मारा गया। क्या वो सुई की चोट डॉक्टर शौकत के लिए थी? क्या बार बार हो रहे हमले डॉक्टर शौकत के लिए हैं? और अगर हैं, तो इसके पीछे का राज क्या है? सुनिए भाग पांच में। कोठी में सब लोग बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। उसने 7 बजे आने का वादा किया था, लेकिन अब तो 8 बज रहे थे।
शौकत बहुत ही पंक्चुअल आदमी मालूम होता है, न जाने क्या बात है,
डॉक्टर तौसीफ ने बाग में टहलते हुए कहा। नजमा बार बार अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी देख रही थी। पता नहीं क्या बात हो सकती है। कुंवर सलीम ने पंजों के बल खड़े होते हुए माथे पर हाथ रखकर अंधेरे में घूरते हुए कहा,
मेरा ख्याल है कि शायद वो घर से देर से रवाना हुआ होगा। मैं तो कह रहा था कि कार भिजवा दूं, लेकिन उसने कहा कि वो पैदल ही आएगा। अरे ये कौन आ रहा है? अरे अरे अरे, हेलो डॉक्टर, हेलो भाई। इंतजार करते करते आंखें पथरा गईं।
डॉक्टर शौकत बरामदे में दाखिल हो चुका था। वो रास्ते भर अपने चेहरे से परेशानी के भाव मिटाने की कोशिश करता आया था। सॉरी, मुझे अफसोस है, अपनी बेवकूफी की वजह से चलते वक्त टॉर्च लेकर नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि रास्ता भूल गया, डॉक्टर शौकत ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आपके सर में इतने सारे तिनके कहां से आ गए? हाँ जी, वहां नहीं, वो पीछे की तरफ, नजमा ने मुस्कुरा कर कहा। तिनके? ओ हाँ, बताइए ना आखिर क्या बात है, कुंवर सलीम ने गंभीरता से पूछा। अरे वो तो एक पागल कुत्ता था, रास्ते में उसने मुझे दौड़ाया, अंधेरा काफी था तो ठोकर खाकर गिर गया। वो तो कहिए कि एक राहगीर उधर से आ रहा था, वरना आजकल दिसंबर में पागल कुत्ता? कुत्ते तो ज्यादातर गर्मियों में पागल होते हैं, नजमा ने हैरत से कहा। नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है, अक्सर सर्दियों में भी कुत्तों का दिमाग खराब हो जाता है। खैर, आप खुशकिस्मत थे डॉक्टर शौकत, पागल कुत्तों का जहर बहुत खतरनाक होता है, आप तो जानते ही होंगे, कुंवर सलीम ने जवाब दिया। हाँ डॉक्टर, आपके आदमियों ने बीमारी के कमरे में सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
जी हाँ, वे लोग इस वक्त वहीं पर हैं,
डॉक्टर तौसीफ ने कहा। आपके इंतजार में तो शायद उन लोगों ने अभी तक खाना भी नहीं खाया, नजमा बोली। मेरा इंतजार आप लोगों ने बेकार किया, मैं ऑपरेशन से पहले थोड़ा सूप ही पीता हूँ, खाना खा लेने से दिमाग किसी तरह काम का नहीं रह जाता। जी हाँ, मैंने भी अक्सर किताबों में यही पढ़ा है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि दुनिया के किसी भी बड़े आदमी ने ये जरूर कहा होगा, नजमा ने शोखी से कहा। डॉक्टर शौकत ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। नजमा से निगाहें मिलते ही वो जमीन की तरफ देखने लगा। खैर वो सब कुछ तो ठीक है, पर मैं तो दिन में 5 सेर से कम नहीं खाता, कुंवर सलीम ने हंसकर कहा। खाना देर से इंतजार में है, हर तंदुरुस्त आदमी का फर्ज है कि उसे इंतजार की जहमत से बचाए, और सब लोग खाने के कमरे में चले गए। पुरानी कोठी के बाग में प्रोफेसर इमरान किसी से बातचीत कर रहा था। कभी कभी दोनों की आवाजें तेज हो जाती तो कभी खुसुर फुसुर में बदल जाती। प्रोफेसर कह रहा था,
लेकिन मैं नहीं जाऊंगा।
अरे तो इसमें बिगड़ने की क्या बात है मेरी जान, न जाने में तुम्हारा ही नुकसान है, दूसरी आवाज सुनाई दी।
मेरा नुकसान? यूनान और रोम के देवताओं की कसम, हरगिज़ नहीं जाऊंगा।
प्रोफेसर की आवाज आई, तुम्हें चलना पड़ेगा, किसी ने कहा।
सुनो इसे, आप अबील के बच्चे, तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ से ले जाओ,
प्रोफेसर चीखा। खैर ना जाओ, लेकिन तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। देखना यह है कि कल तुम्हें सफेदा कैसे मिलता है, हुँ? दूसरे आदमी ने कहा और बाग से निकलने लगा।
ठहरो ठहरो, ऐसी बातें ना करो, तुमने पहले ही क्यों नहीं बताया कि तुम वीर बहुनी के बच्चे हो?
प्रोफेसर हंसकर बोला, वीर बहुटी? हाँ, वीर बहुटी। मगर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ माली के झोपड़े तक चलना होगा।
अच्छा तो चलो फिर चलते हैं, उसमें क्या है?
प्रोफेसर ने कहा और दोनों माली के झोपड़े की तरफ चल पड़े। लगभग आधे घंटे के बाद प्रोफेसर लंगड़ाता हुआ माली के झोपड़े से बाहर निकला। वो अकेला था और उसके कंधे पर एक वजनी गठरी थी। एक जगह रुककर उसने इधर उधर देखा, फिर माली के झोपड़े की तरफ घूंसा तान कर कहने लगा,
अबे तूने मुझे समझा क्या है? मैं कुत्ते का गोश्त खिला दूंगा, छछुंदर की औलाद नहीं तो। अबे वो हूँ जिसने सिकंदर आजम का मुर्गा चुराया था। चमगादड़ मुझे सलाम करने आते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तू अपने दादा का बीज है हरामी। चला जा यहाँ से, मक्खियाँ मारने आया है। 30 मार्खा कहीं का, 30 मार्खा की ऐसी की तैसी। नहीं जानता मैं भूतों का सरदार हूँ। आओ ए हरामी भेड़ियों, खा लो इसे, खा लो, चबा जाओ। चुड़ैलों की हरामी नानी अशकुलनिया, तू कहाँ है? देख देख मैं नाच रहा हूँ, मैं तेरा भतीजा हूँ, आजा आजा प्यारी।
ये सब कहकर प्रोफेसर ने वहीं पर नाचना शुरू कर दिया। फिर वो सीने पर हाथ मार कर कहने लगा,
मैं इस आग का पुजारी हूँ जो इस मरीख में जल रही है। हजारों साल से मैं इसकी पूजा करता आया हूँ। मैं 5000 साल से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन सितारा कभी न कभी तो टूटेगा ही। मैंने तेरे लिए खरगोश पाले, मैं तुझे गिलहरियों के कबाब खिलाता हूँ, मैं तितलियों के परों से सिगरेट बनाकर तुझे पिलाता हूँ। ए प्यारे शैतान, तू कहाँ है? मैं तुझे अपने कान काट कर खिला दूंगा, एक बार आ तो सही।
और वो न जाने क्या न क्या बड़बड़ाता उछलता कूदता हुआ पुरानी कोठी के बाग में गायब हो गया। मरीज के कमरे का दृश्य कुछ हद तक ऑपरेशन रूम में बदल चुका था। नर्स और डॉक्टर सफेद कपड़ों में धीरे धीरे इधर उधर आ जा रहे थे। ऑपरेशन टेबल जो सिविल अस्पताल के यहां से लाई गई थी कमरे के बीच में पड़ी थी। मरीज को उस पर लिटाया जा चुका था। कमरे में बहुत ज्यादा वाट के बल्ब जला दिए गए थे। चिलमचियों में गर्म और ठंडा पानी रखा था। उसी के करीब एक दूसरी मेज पर अजीबोगरीब किस्म के ऑपरेशन के औजार और रबड़ के दस्ताने पड़े हुए थे। डॉक्टर शौकत कुछ देर पहले हुए हादसे को बिल्कुल भुला चुका था। अब उसका ध्यान सिर्फ ऑपरेशन की तरफ था। एक आदमी की जिंदगी खतरे में थी। उसने सारी कोशिशें कर देखने का फैसला कर लिया था। नौजवान डॉक्टर ये भी अच्छी तरह समझता था कि अगर उसे इस केस में कामयाबी मिल गई तो उसकी शख्सियत कहीं की कहीं जा पहुंचेगी। कामयाबी उसकी तरक्की के जीनों पर आ जाएगी और नाकामी, लेकिन नहीं नहीं, उसके जहन में नाकामी का ख्याल इसका नामोनिशान भी न था। वो एक काबिल डॉक्टर है और वो एक काबिल डॉक्टर की तरह इत्मीनान से नजर आ रहा था। डॉक्टर तौसीफ भी कमरे में मौजूद था, लेकिन उसकी हैसियत एक तमाशाई जैसी थी। वो देख रहा था और हैरान था कि ये नौजवान लड़का किस तरह सुकून और इत्मीनान के साथ अपनी तैयारियों में जुटा है। ऐसे अवसर पर इतना इत्मीनान तो उसने अच्छे अच्छे डॉक्टरों के चेहरे पर नहीं देखा। वो दिल ही दिल में उसकी तारीफें कर रहा था। बाहर बरामदे में नवाब साहब की बहन और नजमा बैठी थीं। दोनों परेशान नजर आ रही थीं। कुंवर सलीम टहल टहल कर सिगरेट पी रहा था। मम्मी सुनिए, क्या वो कामयाब हो जाएगा? मुझे यकीन है कि जरूर कामयाब हो जाएगा, लेकिन कितनी देर लगेगी? नजमा ने बेताबी से कुछ का कुछ कहा। अरे परेशान मत हो बेटी, मेरा ख्याल है कि कई घंटे लगेंगे, हो सकता है सुबह भी हो जाए, इसलिए हम लोगों को यहाँ इस तरह बैठना ठीक नहीं। क्यों ना हम लोग ड्राइंग रूम में चलकर बैठें? कॉफी तो अब तक तैयार हो गई होगी ना? सलीम तुम कॉफी पियोगे क्या? कॉफी का किसे होश है फूफी साहिबा, सलीम ने सिगरेट को बरामदे में बिछे हुए कालीन पर गिराकर पैर से रगड़ते हुए कहा। नजमा मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मुझे हैरत है कि आप ऐसे वक्त में कॉफी नहीं भूली। ओहो, तुम तो सारे कालीनों का सत्यानाश कर दोगे। क्या सिगरेट दूसरी तरफ नहीं फेंक सकते थे? बेगम साहिबा ने नाक भौं सिकोड़ कर कहा।
जहन्नुम में गया कालीन, मेरा दिमाग इस वक्त ठीक नहीं है,
वो तेज लहजे में बोला। औरत ना बनो, अभी कितनी देर की ही बात है कि तुम मेरे मना करने के बावजूद ऑपरेशन की हिमायत कर रहे थे। अपनी हालत को संभालो, तुम्हें तो हम लोगों को दिलासा देना चाहिए, बेगम साहिबा ने ताना मारते हुए कहा। मैं कोशिश करता हूँ कि खुद को संभाल लूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं। मुझे कर्नल तिवारी की बात याद आ रही है, जिसने कहा था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आखिर ये बेवकूफ लड़का किस उम्मीद पर ऑपरेशन कर रहा है? मेरा मतलब यह है कि वो खतरे को जल्द से जल्द करीब लाने की कोशिश कर रहा है।
नहीं कुंवर साहब, नहीं, मुझे यकीन होता जा रहा है कि जल्द से जल्द नवाब साहब को वो ठीक कर देगा।
डॉक्टर तौसीफ ने बीमार के कमरे से निकलते हुए कहा। मैं आपका मतलब नहीं समझा, क्या ऑपरेशन शुरू हो गया? सलीम उसकी तरफ घूम कर बोला।
नहीं नहीं, अभी तो वो लोग तैयारी कर रहे हैं और मेरा वहाँ कोई खास काम है नहीं, इसलिए मैं यहाँ चला आया।
डॉक्टर तौसीफ ने मुस्कुराते हुए कहा। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मम्मी तो काफी सब्र वाली हैं, लेकिन शायद मुझे और सलीम को जल्द से जल्द डॉक्टरी मदद की जरूरत पड़ेगी। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि आप इस नौजवान डॉक्टर की कामयाबी पर इतना यकीन रखते हैं। वो कितना संजीदा और मुतमईन है, नजमा बोली। और साथ ही साथ काफी खूबसूरत भी, सलीम ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या बक रहे हो तुम सलीम, बेगम साहिबा तेजी से बोली और नजमा ने शर्मा कर सिर झुका लिया। माफ कीजिएगा फूफी साहिबा, मैं बहुत परेशान हूँ, सलीम ये कहकर टहलता हुआ बरामदे के दूसरे कोने में चला गया।
कुंवर साहब, मेरे ख्याल से बिजली का इंतजाम बिल्कुल ठीक होगा। शायद डायनोमो की देखभाल आप ही करते हैं ना?
डॉक्टर तौसीफ ने कहा। जी हाँ, क्यों, डायनोमो तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो ये पूछने का मतलब? सलीम ने डॉक्टर को घूरते हुए कहा।
मतलब साफ है कि अगर डायनामो फेल हो गया तो अंधेरे में ऑपरेशन किस तरह होगा? एक बड़े ऑपरेशन के लिए काफी एहतियात की जरूरत होती है,
डॉक्टर तौसीफ ने कहा। वैसे तो डायनामो फेल होने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन अगर फेल हो भी गया तो मैं क्या कर सकूंगा? ये तो कितना खतरनाक ख्याल है। अगर वाकई ऐसा हुआ तो डॉक्टर शौकत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। ओ नहीं नहीं, मेरे खुदा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। कुंवर सलीम के चेहरे पर बेचैनी के भाव पैदा हो गए थे। इतने में एक नौकर दाखिल हुआ। क्यों, क्या है? सलीम ने उससे पूछा। प्रोफेसर साहब नीचे खड़े हैं, आपको बुला रहे हैं, नौकर ने कहा। प्रोफेसर, मुझे इस वक्त? सलीम ने हैरत से कहा। अरे जाओ भाई, नीचे जाकर देखो कहीं वो पागल यहां ना चला आए, बेगम साहिबा जल्दी से बोली। मुझे तो हैरत है कि वो यहां इस वक्त किस लिए आया है, सलीम ने नौकर से कहा। क्या तुमने उसे ऑपरेशन के बारे में तो नहीं बता दिया? हुजूर, मैंने उन्हें हर तरह से समझाया लेकिन वो सुनते ही नहीं। खैर चलो, देखूं क्या बकता है, इस पागल से तो मैं तंग आ चुका हूं, सलीम ने कहा। सलीम नीचे आया, प्रोफेसर बाहर खड़ा था। उसने सर्दी से बचने के लिए सिर पर मफलर लपेट रखा था और चेस्टर का कॉलर उसके कानों के ऊपर तक चढ़ा था। इन सब बातों के बावजूद भी वो सर्दी की वजह से सिकुड़ा जा रहा था। क्यों प्रोफेसर, क्या बात है? सलीम ने उसके करीब आकर पूछा।
एक चमकदार सितारा दक्षिण की तरफ निकला है। अगर तुम अपनी मालूमात में बढ़ोतरी करना चाहते हो तो चलो मेरे साथ,
प्रोफेसर ने खुश मिजाज लहजे में कहा। अरे जहन्नुम में गई मालूमात, क्या इतनी सी बात के लिए तुम दौड़े आए हो, सलीम ने झुंझला कर कहा।
बात तो कुछ दूसरी है, मैं तुम्हें बहुत ही हैरतनाक चीज दिखाना चाहता हूँ, ऐसी चीज तुमने कभी नहीं देखी होगी,
उसने सलीम का हाथ पकड़कर उसे पुरानी कोठी की तरफ ले जाते हुए कहा। सलीम प्रोफेसर के साथ चलने लगा, लेकिन उसने लोहे की एक मोटी सी सलाख को न देखा जो प्रोफेसर अपनी आस्तीन में छिपाए हुए था। थोड़ी दूर चलने के बाद प्रोफेसर ने वो सलाख सलीम के सिर पर दे मारी। सलीम बगैर आवाज निकाले चकरा कर धम से जमीन पर आ रहा। प्रोफेसर हैरतअंगेज फुर्ती के साथ झुका और बेहोश सलीम को उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई हल्के फुल्के बच्चे को उठा लेता है। वो तेजी से पुरानी कोठी की तरफ जा रहा था। ये सब इतनी जल्दी और इतनी खामोशी से हुआ कि वो नौकर जो हॉल में सलीम का इंतजार कर रहा था यही सोचता रह गया कि अब सलीम प्रोफेसर को उसकी कोठी में धकेल कर वापस आ रहा होगा। पुरानी कोठी में पहुंचकर प्रोफेसर ने बेहोश सलीम को एक कुर्सी पर डाल दिया और झुक कर सिर के उस हिस्से को देखने लगा जो चोट लगने की वजह से फूल गया था। उसने बहुत ही इत्मीनान से इस तरह सिर हिलाया जैसे उसे यकीन हो गया हो कि वो अब भी काफी देर तक खामोश रहेगा। फिर इस पागल बूढ़े ने सलीम को पीठ पर लाद कर मीनार पर चढ़ना शुरू किया। ऊपर के कमरे में अंधेरा था। उसने टटोल कर सलीम को एक बड़े सोफे पर डाला और मोमबत्ती जलाकर ताक पर रख दी। हल्की रोशनी में चेस्टर के कॉलर के साए की वजह से उसका चेहरा और ज्यादा खौफनाक मालूम होने लगा था। उसने सलीम को सोफे से बांध दिया और वो दूरबीन के करीब कुर्सी पर बैठ गया और दूरबीन के जरिए नवाब साहब के कमरे का जायजा लेने लगा। नवाब साहब के कमरे की खिड़कियां खुली हुई थी। डॉक्टर और नर्सों ने अपने चेहरे पर सफेद नकाब लगा रखे थे। डॉक्टर शौकत खोलते हुए पानी से रबड़ के दस्ताने निकालकर पहन रहा था। वे सब ऑपरेशन की मेज के पास खड़े थे। ऑपरेशन शुरू होने वाला था।
बहुत खूब, मैं ठीक वक्त पर पहुंच गया, लेकिन आखिर इस सर्दी के बावजूद उन्होंने खिड़कियां क्यों नहीं बंद की हैं?
प्रोफेसर अपने आप से बड़बड़ाया। नवाब साहब की कोठी के चारों तरफ अजीब तरह की खामोशी छाई हुई थी। छोटे से लेकर बड़े तक को अच्छी तरह मालूम था कि बीमार के कमरे में क्या हो रहा है। बेगम साहिबा का सख्त हुक्म था कि किसी किस्म का शोर ना होने पाए। लोग इतनी खामोशी से चल रहे थे जैसे ख्वाब में चल रहे हों। कोठी में नौकरानियां पंजों के बल चल रही थी। घर के सारे कुत्ते बाग के आखिरी किनारे पर खाली झोपड़े में बंद कर दिए गए थे ताकि कोठी के करीब शोर न मचा सकें। प्रोफेसर दूरबीन पर झुका हुआ चारों तरफ से बेखबर बीमार के कमरे का मंजर देख रहा था। वो इतना ध्यान मग्न था कि उसने सलीम के जिस्म की हरकत को भी महसूस नहीं किया। सलीम धीरे धीरे होश में आ रहा था। एक अजीब किस्म की सनसनाहट उसके जिस्म में फैली हुई थी। उसने अपने बाजुओं पर रस्सी के तनाव को भी महसूस नहीं किया। दो तीन बार सिर झटकने के बाद उसने आंखें खोल दी। उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला नजर आ रहा था। फिर दूर एक टिमटिमाता हुआ तारा दिखाई दिया। तारे के चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी थी। धीरे धीरे रोशनी फैलती गई, मोमबत्ती की लौ थर्रा रही थी। प्रोफेसर दूरबीन पर झुका हुआ था। उसने उठने की कोशिश की, मगर ये क्या, वो बंधा क्यों है? फिर उसे कुछ देर पहले का किस्सा याद आया। प्रोफेसर, ये क्या हरकत है? आखिर ये क्या मजाक है? इसकी क्या जरूरत है? उसने भर्राई हुई आवाज में कहा।
अच्छा, तो तुम जाग गए? मैं घबराने की कोई बात नहीं है। इस वक्त तुम उतने ही बेबस हो जितने कि मेरे दूसरे शिकार। तुम्हें यह सुनकर बहुत खुशी होगी कि अब मैं गिलहरियों, खरगोशों और मेंढकों के साथ साथ आदमियों का भी शिकार करने लगा हूँ। क्यों, है ना दिलचस्प खबर?
पहले तो सलीम समझ ही ना सका, लेकिन दूसरे पल में उसे महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म का सारा खून जम गया हो। वो कांप गया। वो अच्छी तरह जानता था कि बूढ़े ने अपने दूसरे शिकारों का हवाला क्यों दिया है। तो क्या अब वो अपनी खूनी प्यास बुझाने के लिए जानवरों की बजाय आदमियों का शिकार करने लगा है?
अरे
सलीम ने घबराहट के बावजूद लापरवाही का अंदाज पैदा करके कहकहा लगाने की कोशिश की।
बहुत अच्छे प्रोफेसर,
लेकिन मजाक का वक्त और मौका होता है। चलो शाबाश, मेरी रस्सियां खोल दो। मैं वादा करता हूं कि
सब्र सब्र मेरे अच्छे लड़के, सब्र। अभी तो मेरी बारी आई है।
उसने उसकी तरफ झुककर मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी बारी? क्या मतलब? सलीम ने चौंक कर पूछा।
क्यों, क्या तुम नहीं जानते?
प्रोफेसर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, कहो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सलीम ने बेपरवाही से कहा,
मेरा इरादा ये था कि नौजवान डॉक्टर अपने मकसद में कामयाब हो जाए, और मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम दोबारा आजाद कर दिए गए तो ऐसा हो ना सकेगा, इसी का मुझे खौफ है। बहरहाल मैं ये चाहता हूँ कि वो इत्मीनान के साथ नवाब साहब की जान बचा सके, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ भोले सलीम। क्या समझे? मैं भी कम चालाक नहीं।
तुम तो बहुत चालाक हो, वाह क्या कहने। सलीम ने हंसकर कहा,
और तुम यहाँ बिल्कुल बेबस हो। मैं यहाँ तुम्हारी पिटाई भी करूँगा और बीमार के कमरे का मंजर भी देख सकूंगा। ना तो मैं बेवकूफ हूँ और ना मेरी दूरबीन, महज मजाक है, क्या समझे?
प्रोफेसर ने दूरबीन के शीशे में आंख लगाते हुए कहा। अचानक सलीम में एक हैरत अंगेज बदलाव आ गया, उसकी भौहें तन गईं। कुछ देर पहले जो होंठ मुस्कुरा रहे थे भिंच कर रह गए, आंखों में शरारत भरी शोखी एक बहुत ही खौफनाक किस्म की चमक में बदल गई। अब तक वो एक हंसमुख नौजवान था, ऐसा मालूम होता था जैसे उसके चेहरे पर से एक गहरी नकाब हट गई हो और वो एक खूंखार भेड़िए के रूप में हांफने लगा।
इन रस्सियों को खोल दो सुअर के बच्चे, वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा,
वो चीख कर बोला।
अरे धीरज रखो बच्चे, धीरज रखो,
प्रोफेसर ने मुड़कर कहा।
कल तक मैं तुमसे खफा जरूर था, मुझे इसका अफसोस है, लेकिन तुम इस वक्त मेरी गिरफ्त में हो, कातिल साजिशी, तुम बहुत खतरनाक होते जा रहे हो, ऐसी सूरत में तुम्हारी निगरानी की काफी जरूरत है।
अरे तुम बेवकूफ हो, बिल्कुल बेवकूफ, सलीम ने कहा।
शायद ऐसा ही हो, लेकिन मैं इतना भी बेवकूफ नहीं कि तुम्हारी साजिशों को ना समझ सकूं। तुम अब तक मुझे एक बेजान औजार की तरह इस्तेमाल करते आए हो, लेकिन आज की रात मेरी है, क्या समझे?
सलीम के जिस्म से पसीना फूट पड़ा, गुस्से की जगह खौफ ने ले ली। वो अब तक प्रोफेसर को पागल समझता था और जिधर उसे ले जाना चाहता था वो बगैर समझे बूझे चला जाता था, लेकिन फिर भी वो हमेशा होशियार रहा। उसने आज तक अपने असली प्लान की भनक भी प्रोफेसर के कान में पड़ने ना दी। फिर उसे उसके प्लान का पता कैसे चला? वो खौफजदा जरूर था, लेकिन नाउम्मीद नहीं, क्योंकि उसकी जिंदगी के दूसरे पहलू की जानकारी प्रोफेसर के अलावा किसी और को थी ही नहीं, और प्रोफेसर तो पागल था।
तुम कत्ल की बात करते हो?
खुदा की कसम, अगर तुमने ये रस्सी फौरन ना खोल दी तो मैं अपनी उस धमकी को पूरा करके दिखाऊंगा जो तुम अक्सर देते रहते हो। मैं पुलिस को खबर कर दूंगा कि तुम कातिल हो, अपने असिस्टेंट के कातिल।
मैं? ये तो मैं आज एक नई दिलचस्प खबर सुन रहा हूँ। मैंने ये कत्ल कब किया था?
प्रोफेसर ने शरारती लहजे में कहा। कब किया था? इतनी जल्दी भूल गए? क्या तुमने अपने उस असिस्टेंट नईम को अपने बनाए हुए गुब्बारे में बिठा कर नहीं उड़ाया था, जिसका आज तक पता नहीं चल सका? सलीम ने कहा। प्रोफेसर खामोश हो गया, उसके चेहरे पर अजीब किस्म की मुस्कुराहट नाच रही थी।
और हाँ, इसी हादसे के बाद से मेरा दिमाग खराब हो गया और तुम्हें इस बात का पता चल गया, लिहाजा तुमने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और मुझसे नाजायज कामों में मदद लेते रहे, मुझसे रुपए ऐंठते रहे। लेकिन बरखुरदार, शायद तुम्हें इसका पता नहीं कि मैं हाल ही में एक सरकारी जासूस से मिल चुका हूँ। अरे तुम डर क्यों रहे हो? मैंने तुम्हारे बारे में उससे कुछ भी नहीं कहा। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि नईम मेरे गुब्बारे के टूटने से मरा नहीं, कि वो इस वक्त भी मद्रास के किसी घटिया से शराब खाने में नशे में चूर औंधा पड़ा होगा, और मुझे इसका भी पता है कि उसने जिंदा होने के जो खत मुझे लिखे थे वो तुमने रास्ते ही से गायब कर दिए। बहुत दिन हुए, तुम्हें उसके जिंदा होने का सबूत तो मिल गया था, लेकिन तुम मुझे पागल समझकर रुपए ऐंठने के लिए अंधेरे में ही मुझे रखना चाहते थे। कहो सलीम मियां, कैसी रही? क्या मैं तुम्हें वो भी बातें बताऊं जो मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं?
कुंवर सलीम सहम कर रह गया था। उसे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे प्रोफेसर का पागलपन किसी नए मोड़ पर आ गया हो। जिसे वो अब तक केंचुआ समझता रहा, वो आज फन उठाए उस पर झपटने की कोशिश कर रहा था। खैर प्रोफेसर, छोड़ो इन सब बातों को, सलीम ने कोशिश करके हंसते हुए कहा। मेरी रस्सियां खोल दो, आदमी बनो। अरे तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें इससे भी बड़ी दूरबीन खरीद कर दूंगा, इतनी बड़ी कि सचमुच एक शीशे का गुंबद मालूम होगी।
अरे ठहरो सलीम, ठहरो,
प्रोफेसर ने दूरबीन के शीशे पर झुक कर कहा।
मैं जरा बीमार के कमरे में तो देख लूं। हाँ तो अभी ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। ऐसे खतरनाक ऑपरेशनों में काफी तैयारी की जरूरत होती है। मुझे यकीन है कि नौजवान डॉक्टर नवाब साहब की जान बचाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन सलीम, ये तो बहुत बुरी बात होगी, है ना? अगर नवाब साहब 10-20 बरस और जिंदा रहे तो क्या होगा? तुम्हारी विरासत तुम तक जल्द पहुंच ही ना सकेगी।
इससे क्या होता है, मैं हर हाल में उनका वारिस हूँ, और फिर मुझे इसकी जरूरत ही क्या है? क्या मैं कम दौलतमंद हूँ?
खैर खैर, तुम्हारी दौलत का हाल तो मैं भी अच्छी तरह ही जानता हूँ। इसीलिए तो एक बेबस बूढ़े से रुपए ऐंठते रहे। सुनो बेटे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारी तंगहाली अब नवाब साहब की मौत की ख्वाहिश रखती है, इसीलिए मैंने तुम्हें इस वक्त तकलीफ दी है। मुझे उम्मीद है कि तुम एक अच्छे बच्चे की तरह इस बात का ख्याल तक ना करोगे। क्या तुमने आज डॉक्टर तौसीफ को इसलिए शहर नहीं भेजा था कि नौजवान डॉक्टर सचमुच पैदल आने पर मजबूर हो जाए?
क्या बकवास है, सलीम ने दूसरी तरफ मुंह फेरते हुए कहा।
और फिर तुम एक रस्सी लेकर पेड़ पर चढ़ गए। तुम क्या समझते हो कि मैं कुछ नहीं जानता? मैं ये भी जानता हूँ कि डॉक्टर शौकत बच कैसे गए, लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम मुझे अंधेरे का चमगादड़ समझते हो ना? तुम्हारा ख्याल दुरुस्त भी है। अंधेरा मुझ पर सूरज की तरह रोशन रहता है। मैं तो इससे ज्यादा भी जानता हूँ। क्यों, क्या मैं नहीं जानता?
तुम कुछ नहीं जानते, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है, सलीम ने मुर्दा आवाज में कहा।
तुम इसे ख्याल कह रहे हो, लेकिन ये 100% सच है बेटे। देखो सलीम, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। क्या मैं ये नहीं जानता कि डॉक्टर शौकत को कत्ल कर देने की एक वजह और भी है, जिसका ताल्लुक ऑपरेशन से नहीं है?
क्या? सलीम एकदम चौंक कर चीखा।
ठीक ठीक ठीक, तुम्हारी चीख ही इकबाल जुर्म है। क्या तुमने उस खंजरबाज नेपाली को रुपए देकर उसे कत्ल करने के लिए राजी नहीं किया था? उस बेवकूफ ने धोखे में एक बेगुनाह औरत का कत्ल कर दिया।
प्रोफेसर ने सिर हिलाया। ये झूठ है, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? ये सिर्फ शक है, बिल्कुल शक।
मुझे ये सब कैसे मालूम हुआ? क्योंकि दुनिया में तुम्हें एक बड़े चालाक नहीं हो सलीम। मुझे ये भी मालूम है कि उस दिन तुमने एक रिपोर्टर पर गोली चलाई और वो राइफल मेरे हाथ में देकर खुद भाग गए, महज इसलिए कि मुझे पागल ख्याल करते हुए तुम उस वाकये को महज इत्तेफाक समझो। और कहो तो ये भी बता दूं कि तुम उस रिपोर्टर को क्यों मारना चाहते थे। तुम उसे पहचान गए थे, तुम्हें यकीन हो गया था कि उसे तुम्हारी हरकतों का पता चल गया है। उस वक्त तो वो बच गया, लेकिन आखिरकार उसे तुम्हारी ही गोलियों से जख्मी होना पड़ा। क्यों, है ना सच?
न जाने तुम किसकी बातें कर रहे हो, सलीम ने संभलते हुए कहा।
इंस्पेक्टर फरीदी की,
प्रोफेसर ने उसकी आंखों में देखते हुए रुक रुक कर कहा। सलीम के हाथ पैर ढीले पड़ गए, वो सुस्त पड़ गया।
तुम्हारी धमकियां अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं अब तुम्हारे गाल पर इस तरह चांटा मार सकता हूँ।
प्रोफेसर ने उठकर उसके गाल पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा,
क्यों ना मैं इन सब बातों की खबर नजमा और उसकी माँ को दे दूं। तो पुलिस को तो मैंने इसी वक्त खबर दे दी है, लेकिन तुम सोचते होगे कि पुलिस मेरी बातों का एतबार ही ना करेगी क्योंकि मैं तो पागल हूँ।
नहीं नहीं प्रोफेसर, तुम जीत गए, तुम मुझसे ज्यादा चालाक हो। सलीम ने आखिरी पांसा फेंका। इस रस्सी को काट दो, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी शानदार लेबोरेटरी बनवाऊंगा।
तुम्हारा दिमाग किसी भी वक्त चालबाजियों से बाज नहीं आता। अच्छा, मैं तुमसे दोस्ती तो कर लूंगा, मगर इस शर्त पर कि तुम इस मीनार में किसी राज को राज न रखोगे। इसके बाद ये यकीन रखो कि तुम्हारे सब राज मरते दम तक मेरे सीने में दफन रहेंगे। मैं इसीलिए तुमसे ये सब उगलवा रहा हूँ कि तुमने मुझे बहुत दिनों तक ब्लैकमेल किया है। अच्छा, पहले ये बताओ कि वाकई तुमने उस नेपाली से डॉक्टर शौकत के कत्ल की साजिश की थी।
मेरे ख्याल से तुम भी उतना जानते हो जितना मैं। हाँ, मैंने उसके लिए रुपया दिया था।
फिर तुमने उसे कत्ल भी कर दिया इसलिए कि कहीं वो नाम ना बताते।
हाँ, लेकिन ठहरो,
इंस्पेक्टर फरीदी का कत्ल करने के लिए तुमने ही गोली या गोलियां चलवाई थी ना।
हाँ, लेकिन तुम तो इस तरह सवाल कर रहे हो जैसे जैसे
तुमने डॉक्टर शौकत के गले में रस्सी का फंदा भी डाला था।
प्रोफेसर ने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोक दिया। फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो चला है, सलीम ने कहा। हाँ, मैंने फंदा तो डाला था, लेकिन फिर उसने कहा, तुमने अभी तो कहा कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। अरे अब इस रस्सी को काट दो, मैं तुमसे बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूं, इसलिए क्योंकि अब हम अच्छे दोस्त हैं। तुम्हारे हवाई किले बहुत ज्यादा मजबूत मालूम नहीं होते, प्रोफेसर ने कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज बदली हुई थी। सलीम चौंक पड़ा। सिकुड़ा सिकुड़ाया प्रोफेसर तनकर खड़ा हो गया। उसने अपने सिर पर बंधा हुआ मफलर खोल दिया, चेस्टर के कॉलर नीचे गिरा दिया और मोमबत्ती ताक पर से उठाकर अपने चेहरे के करीब ले आया। लो बेटा, देख लो, मैं हूं तुम्हारा बाप, इंस्पेक्टर फरीदी। क्या? सलीम के मुंह से निकल गया और उसने अपना सिर घूमता हुआ सा महसूस किया, लेकिन वो फौरन ही संभल गया। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव से साफ जाहिर हो रहा था कि वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता, और ये किस तरह की हरकत है? सलीम ने गरज कर कहा। ना 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 ना, शोर नहीं, शोर नहीं। तुमसे ज्यादा मुझे कौन पहचान सकता है, जबकि तुम मेरे जनाजे में भी शरीक थे। इसकी तो मैं तारीफ करूंगा सलीम, तुम बहुत होशियार हो। अगर मैं अपने मकान से एक जनाजा निकलवाने का इंतजाम ना करता तो तुम्हें तो मेरी मौत का हरगिज यकीन ना होता। अखबारों में मेरी मौत की खबर सुनकर शायद तुम रात ही को शहर आ गए थे। मेरे लिए अस्पताल से एक मुर्दा हासिल कर लेना कोई मुश्किल काम ना था, और शायद तुमने दूसरे दिन कब्रिस्तान तक मेरी लाश का पीछा भी किया। मैं कबूल करता हूं कि तुम एक अच्छे साजिशी जरूर हो, लेकिन अच्छे जासूस नहीं। तुमने ये भी ना सोचा कि 5 गोलियां खाने के बाद बाहोशो हवास 15 मील का सफर तय करना अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। उस रात तुमने सार्जेंट हमीद के घर के चक्कर भी काटे थे, लेकिन शायद उस वक्त तुम वहां मौजूद न थे जब वो नेपाली के भेस में राजरूप नगर इसलिए आया था कि डॉक्टर तौसीफ को इस बात की खबर पुलिस को करने से रोक दे कि मैं उससे मिल चुका हूं। और राजरूप नगर से वापसी पर यह हादसा पेश आया। मैंने एक बार रिपोर्टर के भेस में मिलकर सख्त गलती की थी, इसलिए कि तुम मुझे पहचानते थे, और क्यों ना पहचानते, जबकि मेरा पीछा तो तुम कई बार कर चुके थे। उस रात भी तुमने मेरा पीछा किया था जब मैं नेपाली के कत्ल के बाद घर वापस आ रहा था। फिर तुमने कुबड़े के भेस में सार्जेंट हमीद को गलत राह पर लगाने की कोशिश की थी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तुम्हें शक हो चला था कि मैं तुम्हें अपराधी समझता हूँ, लिहाजा वापसी में तुमने मुझ पर गोलियां चलाईं और राइफल प्रोफेसर के हाथ में देकर फरार हो गए। प्रोफेसर से बातचीत करते वक्त मैंने अच्छी तरह अंदाजा लगा लिया था कि गोली चलाना तो दरकिनार, वो उस राइफल का इस्तेमाल तक नहीं जानता। तुमने मुझे कस्बे की तरफ मुड़ते देखा, इस मौके को गनीमत जानकर तुम वहां से 2 मील के फासले पर झाड़ियों में जा छुपे और तुम उसी तांगे पर गए जो सड़क पर खड़ा था। तुमने खुद ही मदद के लिए चीख कर मेरा ध्यान अपनी तरफ करना चाहा, फिर तुमने गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसी वक्त मेरे जहन में यह नया प्लान आया जिसका नतीजा ये है कि आज तुम एक चूहेदानी में फंसे हुए चूहे की तरह नजर आ रहे हो। इंस्पेक्टर फरीदी इतना कहकर सिगरेट सुलगाने के लिए रुक गया। न जाने तुम कौन हो और क्या बक रहे हो, खैरियत इसी में है कि मुझे खोल दो वरना अच्छा ना होगा, सलीम ने झुंझला कर कहा। अभी तक तो अच्छा ही हो रहा है, फरीदी ने कंधे उचका कर कहा और झुक कर दूरबीन से दूर देखने लगा। क्या हुआ इसके बाद? क्या इंस्पेक्टर फरीदी सलीम को कातिल के तौर पर गिरफ्तार कर पाया? क्या वो सलीम के खिलाफ सारे सबूत जुटा पाया और नजमा और फूफी जान को इस बात की खबर दे पाया? सुनिए अगले भाग में।